તારીખ 18/3/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 588 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 107.
અમૃત પત્રાંક 588. ઓમ શ્રીજી વિતરાગને દ્રવ્ય ભાવ સંયોગ સે વારંવાર છૂટને કી પ્રેરણા કી હૈ ઓર ઉસ સંયોગ કા વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાની કો ભી કર્તવ્ય નહીં હૈ એસા અખંડ માર્ગ કહા હૈ ઉન શ્રીજીન વિતરાગ કે ચરણ કમલ મેં અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર. ક્યા કહા કે શ્રીજીને વિતરાગને તીર્થંકર પરમાત્માને અન્ય દ્રવ્ય ઓર અન્ય દ્રવ્ય કે પ્રતિ કે ભાવ યા અન્ય દ્રવ્ય કે પરિણામ એસે સંયોગ છે વારંવાર છૂટને કી પ્રેરણા કી હૈ ઉસકે પ્રતિ જો પરિણામ લગતે હૈં વહી સંયોગ હૈ. સંયોગ કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ કે જિસ પદાર્થ કે અવલંબન સે જીવ કો વિભાવ પરિણામ કી ઉત્પત્તિ હો ઉસકો કહેતે હૈં સંયોગ. ऐसे तो छह द्रव्य का संयोग अनादि अनंत है. लोक में छह द्रव्य है, दूसरे जीव भी है, उद्गल परमाणु भी है, कालाणु है, धर्मास्तिकाएं धर्मास्तिकाएं और आकाश. और छह द्रव्य का संयोग अनादि अनंत रहता ही है. કોઈ દ્રવ્ય કા કભી અભાવ તો હોતા નહીં, કહી ભી અભાવ નહીં હોતા. લોક કે પૂરે ક્ષેત્ર મેં કોઈ દ્રવ્ય કા અભાવ તો નહીં હોતા. લેકિન જિસ પદાર્થ કે અવલંબન સે જીવ કો વિભાવ હોતા હો ઉનકો કહેતે હૈ કે ઇનકા સંયોગ હૈ. યા સંસાર મેં જિસ પદાર્થ સે ઉદય ભાવ વર્તતા હો ઉસકો કહેતે હૈ કે ઉસ પદાર્થ કા સંયોગ હુઆ. જૈસે સિદ્ધ પરમાત્મા કો કોણ સા સંયોગ હૈ, છ દ્રવ્ય તો વહાં ભી હૈ, વહાં ભી નિબોધ કે અનંત જીવ હૈ, સિદ્ધ કે ભી અનંત જીવ હૈ, ચરમ સીમા હૈ દોનો અવસ્થા કે, દોનો પ્રકાર કે જીવ વહાં ભી હૈ, સિદ્ધાલય કે પરમાણુ ભી હૈ, ધર્માસ્તી અધર્માસ્તી આકાશકાલ ભી હૈ, ફિર ભી સંયોગ નહીં હૈ ક્યોંકે ઉદય ભાવ નહીં હૈ. તો સંયોગ કે ઉદય ભાવ સે છૂટને કી વારંવાર પ્રેરણા કી હૈ ઓર ઉસ સંયોગ કા વિશ્વાસ પરમ જ્ઞાની કો ભી કર્તવ્ય નહીં હૈ. યાને इस संयोग का विश्वास माने क्या, कि भले ही कोई प्रकार का संयोग हो हम हमारे में रहेंगे, ऐसा विश्वास कर्तव्य नहीं है। जहाँ तक उदय भाव वर्तता है, कहीं न कहीं परिणाम जाएगा और वो परिणाम विभाव रूप परिणमन करेगा। इसलिए संयोग का विवेक करना योग्य है, संयोग संबंधित विवेक करना योग्य है। आत्म परिणाम में जो हितकारी हो ऐसे संयोग में रहना, आत्म परिणाम को अहितकारी हो ऐसे संयोग में नहीं रहना, इतना विवेक कर्तव्य है। भले ही आत्म परिणाम के अहितकारी ऐसे संयोग हो, हमें कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा विश्वास कर्तव्य नहीं है। क्यों? कि संसार में जीव की योग्यता जो भी प्रकार की रही है, उस योग्यता के कारण से परिणाम तो होता है, अपनी योग्यता के कारण से होता है। अपनी योग्यता को समझना है। संयोग कुछ कराते हैं वो बात इधर नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता को समझ करके जैसे कैसे भी संयोग में रहने का विवेक या नहीं रहने का विवेक जीव को कर्तव्य है। और जीव में यहाँ तो परम ज्ञानी को भी कर्तव्य नहीं, विश्वास कर्तव्य नहीं है। परम ज्ञानी मैंने मुनि दशा योग्य, मुनियों को भी बाह्याचरण के खास प्रकार के नियम क्यों है? वे क्यों जंगल में रहते हैं? क्या इनकी दशा ज्यादा कमजोर है इसलिए रहते हैं? मुनिराज की दशा तो और स्वरूप में अधिक स्थिर है, फिर भी वो जंगल में क्यों रहते हैं और समाज के बीच में क्यों नहीं रहते हैं? तो कहते हैं कि वितराग जिनेन्द्र परमात्मा ने प्रेरणा की है कि संयोग का विश्वास परम ज्ञानी को भी कर्तव्य नहीं है। कोई चक्रवर्ती होते हैं, मैंने मनुष्य गति का सर्वोत्कृष्ट पुण्य चक्रवर्ती को प्राप्त होता है, और वो भी छह खंड का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, तो क्या वो इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि अपने महल के प्रांगण में कहीं भी रह जाए? इतनी व्यवस्था वो नहीं कर सकते? उनके तो महल के अगल बगल में माइलों में तो गार्डन होते हैं, कहीं भी अच्छी सी झोपड़ी बना ले, महल में नहीं रहना तो कोई नहीं, कहीं नहीं, लेकिन दूर नहीं जाए तो विश्वास नहीं करते, संयोग का विश्वास नहीं करते। ऐसा अखंड मार्ग कहा है श्री जिनेन्द्र परमात्मा ने, ऐसा अखंड मार्ग कहा है। हाँ, योग्यता जो है वो आगे के गुण स्थान में खत्म होने वाली है। जितने भी शेष कर्म खिरने के बाकी हैं, जितनी भी प्रकृतियां जाने की बाकी हैं, 148 प्रकृति में सब धीरे धीरे जाती है, तो प्रकृति मार है, इसका मतलब क्या? कि जीव की योग्यता भी वहां रही है। जब प्रकृति सत्ता में है तो जीव की योग्यता भी सत्ता में है, वो तो योग्यता को नहीं समझते हैं, उनको परमाणु से समझाया जाता समझाया जाता है, इसलिए उसका विश्वास नहीं किया जाता। ऐसा अखंड मार्ग कहा है, उन श्री जिन वितराग के चरण कमल में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार, ऐसे उपकार करने वाले जिन वितराग के चरण कमल में, ऐसा आत्महित का जिसने उपदेश दिया, जिसने प्रेरणा दी, उनके चरण कमल में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, नमस्कार वचन हेडिंग में दे करके इस पत्र का प्रारंभ करते हैं। आत्मस्वरूप का निश्चय होने में जीव की अनादि काल से भूल होती आई है। आत्मस्वरूप का निश्चय होने में, निश्चय होना मैंने पहचान होने में, जीव की अनादि काल से भूल होती आई है। आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हुई है अनादिकाल से, कुछ ने कुछ अन्यथा कल्पना कर ली है कि आत्मा ऐसा, मैं ऐसा हूँ, आत्मा मैंने, मैं ऐसा हूँ। जैसा मूल स्वरूप है ऐसा निश्चय कभी एक बार भी नहीं किया है। शास्त्र पढ़ा है फिर भी स्वरूप निश्चय अंतर में नहीं हुआ है, अपने स्वरूप का निश्चय अंतर में नहीं कर सका, अनादि से भूल किया है, कल्पना किया है। और ऐसा करने में तीन कारण दिए हैं 449 पत्र में, अन्यथा कल्पना क्यों हो जाती है कि एक तो ओग संगना है, एक लोक संगना है, और एक असत्संग का प्रभाव है जीव के परिणाम पर। तीन कारण से आत्मस्वरूप का निश्चय होने में कल्पना हुआ करती है। 449 देखिए, पेज नंबर 379 जो पैराग्राफ है पत्र का, उसमें तीन पैराग्राफ छोड़ करके, आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना से विचार करने में, कल्पना से क्यों विचार किया, अनेक प्रकार की कल्पना से आत्मा का विचार क्यों किया, वास्तविक पहचान और निश्चय क्यों नहीं हुआ, उसमें लोक संगना, ओग संगना और अत्संग असत्संग, ये कारण है, ये तीन कारण है जिन कारणों में उदासीन हुए बिना और निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है, परंपरा भी मोक्ष नहीं है ऐसा माने बिना, और निसत्व सत्शास्त्र और असद्गुरु जो आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण हैं, उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। यहाँ भी स्वरूप निश्चय के विषय में ये बात चली है कि जीव को जीव का स्वरूप का, मैंने अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता है और दुष्कर हो जाता है, इसका ये कारण है। लोक संज्ञा इसको कहते हैं कि जो लोगों को अच्छा दिखाने के लिए प्रवृत्ति करता है, धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक साधन की प्रवृत्ति करता है, उसमें भी लोगों को नजर में रख करके कि हमारे समाज को क्या लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगे ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में कुछ गड़बड़ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, और आत्मस्वरूप के विषय में कल्पना करके कुछ दिखाना, जैसे एक विद्वान को भी ऐसा लागू होता है कि हम नई नई बात सुनाते रहें जिससे हमारा सुनने वालों के ऊपर अच्छा प्रभाव रहा करें, और हमारे विषय में उन लोगों को विशेष आदर रहा करे, समाज समाज को आदर रहा करे हमारे हमारे प्रति। तो आत्मस्वरूप जैसा कहा ज्ञानियों ने ऐसा वो नहीं कहेंगे, कुछ कल्पना करके चढ़ा बढ़ा के गड़बड़ करेगा, ये लोक संज्ञा है। दूसरों की दूसरे लोगों की नज़र में अपना अच्छापन बना रहे, अपना स्थान जैसा है, अपनी प्रेस्टीज जैसी है, अपनी इज्जत जैसी है, वो बराबर बनी रहे, ऐसे परिणाम जिसके होते हैं उसको कहते हैं कि लोक संज्ञा। अब आत्मस्वरूप का निश्चय किस हालत में होता है वो समझना पहले जरूरी है। आत्मस्वरूप का निश्चय जो होता है वो बहिर्मुख उपयोग में नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो अंतः तत्व है वो अंतर स्वरूप का निश्चय अंदर में थोड़ा झुक करके होता है, ऐसे बाहर झुके हुए परिणामों से आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होता है। जिसको लोक संज्ञा होती है उनके परिणाम उधर ही रहते हैं, लोगों के प्रति इसके परिणाम रहेंगे, तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, जबकि ज्ञानी कभी ऐसा विचार नहीं करते, वो अपने सही रास्ते पे चलते हैं, जिसको जो कुछ लगना हो लगो, हमको किसी को लगने लगाने के लिए कुछ प्रवृत्ति नहीं करनी है। ज्ञानी तो खैर करते ही नहीं, आत्मार्थी भी नहीं करते, निंदा स्तुति के लिए आत्मार्थी की प्रवृत्ति कभी नहीं होती। कोई पत्र में आया है निंदा स्तुति के लिए, ऐसा करूंगा लोग मेरी निंदा करेंगे, और ऐसा प्रवर्तन करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, स्तुति मैंने प्रशंसा, तो निंदा प्रशंसा से कोई प्रवृत्ति करनी वो आत्मार्थी नहीं करते कभी, क्योंकि उसमें लक्ष्य वहां ही रहते हैं कि दूसरा प्रशंसा करेगा या निंदा करेगा, तो उसका ध्यान इसका लक्ष्य वहां ही रहा करेगा, और आत्मा अंत तत्व स्वरूप है, उस पर उसका परिणाम जाएगा नहीं, तो उसको निश्चय होगा कहां से कि आत्मस्वरूप का निश्चय वो करने के लिए सक्षम नहीं है, उसकी क्षमता नहीं होती। और ओग संज्ञा किसको कहते हैं, ये लोक संज्ञा और ओग संज्ञा है कि जो बात समझ में आती है वो बात का अनुभव जो नहीं करता है प्रयोग करके, वो समझ ओक संज्ञा में जाती है। स्थूल ओक संज्ञा तो हम सब पहचानते हैं कि जो बिना समझे क्रिया करते हैं तो कहते हैं कि ओक संज्ञा से करते हैं। कोई प्रकार की क्रिया के पीछे क्या लाभ है, यथार्थ कैसे क्रिया होती है, इसको समझे बिना ऐसे ही रूढ़िगत रूप से परंपरा जो चली आई है, जो आगे से चली आती है, वैसे किया करो, उसको तो हम कहेंगे कि ओगे ओगे सब करते हैं, कुछ समझते नहीं और करते हैं। लेकिन हम लोग तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाले तो सब समझते हैं, वो बात ज़्यादा है, तो हमको तो ओक संज्ञा नहीं होगी कि ऐसा नहीं है। समझते हैं फिर भी हमारी समझ को प्रयोगान्वित करके, प्रयोग की कसौटी पे ले जा करके उस समझ का अनुभव नहीं करते हैं, वहां तक वो समझ ओक संज्ञा में रहती है। जैसे आत्मस्वरूप है, तो आत्मस्वरूप के विषय में हम तत्वज्ञान के शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा कैसा है उनकी सब बातें अपने को समझ में आ जाएगी कि आत्मा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ऐसा पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्याय से ऐसा पदार्थ है। लेकिन वो समझ में, वो समझ के हम प्रयोग करके अनुभव नहीं करेंगे तो हमारी समझ ओक संज्ञा में जाती है। नहीं तो पहचान का नाम ही निश्चय है, तो निश्चय करने का, निश्चय करने का जो स्टेज है, आत्मा की पहचान को हो या आत्मा का निश्चय को हो, उस स्टेज में भी प्रयोग करके निश्चय होता है, ये कहने का यहाँ अभिप्राय है कि उसमें भी बिना प्रयोग निश्चय नहीं होता है, पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके या विचार कर करके निश्चय नहीं होता है, कल्पना हो जाती है। जो बात हमने समझी है उसका प्रयोग करना होगा और प्रयोग के दौरान वो बात समझ में आती है। प्रयोग में भूल तो तब रहती है कि जब सत्संग नहीं होता है, तो सत्संग में तो प्रयोग की चर्चा चलती है तो भूल होगी तो निकल जाएगी। ओक संज्ञा वहां तक है और ओक संज्ञा जीव को क्यों चालू रहती है इसका थोड़ा विचार करने योग्य है कि हम तत्व का अभ्यास करते हैं फिर भी ओक संज्ञा क्यों चालू रहती है। कि जिस बात का हमने अभ्यास किया फिर भी हमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ अभ्यास करने से, इसकी दरकार हमने नहीं की, इसलिए ओक संज्ञा चालू रही है। फिर से कि आत्मा कैसा होता है, किस तरह से उनकी प्राप्ति या लाभ होता है, ऐसे विषय में हमको कई बातें समझने में आती है, अनेक न्याय से, अनेक नई से समझ में आती है। फिर भी हम उसके प्रयोग में नहीं जा करके जो जानने में आई उस बात का संतोष पकड़ लेते हैं, और हमको उस बात को जानते हुए क्या लाभ हुआ वो देखते ही नहीं है, और सालों तक शास्त्र का पढ़ाए और सुनना चालू रह जाता है, तो ऐसे जीव ओक संज्ञा में रह जाता है। उसने दरकार नहीं किया कि इतना इतना अभ्यास करके मैंने किया क्या, क्या लाभ हुआ मुझे, इतनी दरकार करते तो वो प्रयोग में चले जाता है, और प्रयोग में जाता तो ओक संज्ञा की निवृत्ति हो जाती। क्योंकि उस जो समझ में आता है, विचार से जो समझ में आता है या सुनने पढ़ने से जो समझ में आता है, उसमें एक प्रैक्टिकल साइड बाकी रहती है हमेशा। और प्रैक्टिकल साइड बाकी रहने से उसका सही समझ जिसको कहने में आता है वो नहीं होती है। तो उस विषय में जो अनजाना रहा है वो कुछ न कुछ कल्पना करेगा, आत्मस्वरूप के विषय में उसकी कल्पना हो जाएगी। और ऐसी भूल जीव ने अनादि से की है, यहां से पत्र चालू किया है कि जीव ने ऐसी भूल अनादि से की है। और सत्संग वाले को तो हो गया ही होगा भूल, क्योंकि जिसको सत्संग की रुचि नहीं है और असत्संग की रुचि है उनको आत्मस्वरूप का निश्चय कहाँ से हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। वो भी नहीं होगी, क्योंकि असत्संग तो बहुत निम्न स्तर में ले जाता है। इसका एक मतलब वो भी निकलता है कि अवगुणी का संग करने की प्रीति रुचि जीव को नहीं होनी चाहिए। ये बात हो सकता है कि खुद में उतना अवगुण नहीं हो अपने में, लेकिन किसी कारण वशात अवगुणी जीव का संग की रुचि प्रीति करने का जीव को बनता है तो उसको अवश्य नुकसान होता है। ये भी यहां से निकलता है। इसलिए संग करने में बहुत विवेक करना जरूरी है, बहुत विवेक करना जरूरी है। मुनि ऐसे सबका संग नहीं करना, देखते हैं कि इसका संग करने से कोई लाभ नुकसान कैसे होता है, फिर उनको मंजूर करना। कोई मुनिराज भी दूसरे मुनि के संग में आना चाहते हैं तो अलाउ नहीं करते हैं, इस तरह से उसको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं कुछ समय तक। हाँ, लगा कि ठीक है दूसरे को बिगाड़ेगा नहीं तो रखेंगे। अपने से जो अधिक गुणवान हो उनके संग में जाना सीधी सादी बात है। अपने से जो अधिक गुणवान है उसके संग में रहना, फिर कोई आपत्ति नहीं है, फिर नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। बस बहुत सीधी सादी बात है। क्या कहा? आत्मस्वरूप का निश्चय होने में जीव की अनादिकाल से भूल होती आई है। समस्त श्रुत ज्ञान स्वरूप द्वादशांग में सर्वप्रथम उपदेश योग्य आचारंग सूत्र है। जो बार अंग है वो समस्त श्रुत ज्ञान में बार अंग है। उसमें पहला सूत्र है आचारंग, फिर सूत्र कृतांग है, ऐसे दूसरे दूसरे हैं। तो जो पहला सूत्र लिखा है वो पहला सूत्र पहला उपदेश करने योग्य है, इसलिए लिखा है। आचारंग है वो पहला उपदेश करने योग्य है, इसलिए लिखा है। जो गणधर देव ने जो क्रम रखा है उसके पीछे भी हेतु है, ऐसा कहते हैं। उनको क्रम पर कितना ख्याल है कृपाल देव का, बहुत जगह क्रम की बात करते हैं वो। समस्त श्रुत ज्ञान स्वरूप द्वादशांग, द्वादशांग में समस्त श्रुत ज्ञान आ जाता है बारह अंग में। उसमें सर्वप्रथम उपदेश योग्य आचारंग सूत्र है। उसके प्रथम श्रुत स्कंध में मैंने प्रारंभ में और प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में प्रथम वाक्य में देखो क्रम क्या लिया है। श्री जिन ने जो उपदेश किया है वह सर्व अंगों का सर्वश्रुत ज्ञान का सार स्वरूप है। देखो गणधर देव की निष्कारण करुणा कैसी है कि पहले ही सारभूत बात शुरू में ही कर दिया। प्रथम अंग में प्रथम श्रुत स्कंद में प्रथम अध्ययन में और इसके प्रथम वचन में क्या मोक्ष का मूल मूल से भी आगे जाओ तो बीजभूत है और सम्यक्त्व स्वरूप है और वही समीचीन रूप है। वो मूल की बात जानने योग्य है जिससे सम्यक्त्व आदि उत्पन्न होकर के जीव का मोक्ष हो जाता है। उस वाक्य में उपदेश स्थिर होने से उपयोग स्थिर होने से जीव को निश्चय होगा कि ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना के बिना जीव स्वच्छंद से निश्चय करे यह छूटने का मार्ग नहीं है। जा उस वाक्य में उपयोग स्थिर होने से जीव को सही निश्चय होगा कि ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना के बिना समागम नहीं लिया है समागम की उपासना के बिना जीव स्वच्छंद से निश्चय करे मैंने अपना स्वरूप का निश्चय करे यह छूटने का मार्ग नहीं है। ये जो वचन है वो वचन वो निग्रंथ प्रवचन करके जो लिए लिखा है ग्रंथ में टाइटल पर वो वचन को देते हैं जेने आत्मा जाण्यो तेने सर्व जाण्यो जो एगम जानई सो सब्वम जानई। ये आचारंग सूत्र नु पहलू वाक्य छे एमां बधुं भरी दीधुं छे एम के छे बार अंगनो सार एमां भर्यो छे। एक आत्मा ने जाने एने बीजू जाणवानी काई जरूर नथी। जा एमां उपयोग स्थिर करो एम के छे एक आत्माने जाणवामां उपयोग स्थिर करो एटले के एक आत्माने जाणवानो प्रयास करो बीजू बीजो विकल्प छोड़ीने एक आत्माने जाणवानो प्रयास करो एम कहेवा मांगे छे। उस वाक्य में उपयोग स्थिर होने से जीव को निश्चय होगा शू छे के एक आत्माने एकलो एकलो जाणवा जाए तो अंधारा में कूद का मारवा जेवु लागे। जे आत्मस्वरूप थी पोते अजाण्यो छे ए आत्मस्वरूप ने एकलो एकलो जाणवा जाए तो एने तरत खबर पड़े कि अंधारा में कूद का मारवाना छे आपने काई आमा आत्मा काई समझाय एवुं नथी। ए आत्मानो निश्चय थाय के आत्माना दर्शन थाय एवुं बने एम नथी तो ए जीवने अवश्य निश्चय थशे शुं के ज्ञानी पुरुष के समागम की उपासना बिना जीव निश्चय से स्वच्छंद से निश्चय करे स्वच्छंद मैंने अपनी मनमानी कल्पना कर ले अपनी मनमानी करे ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में नहीं रहे ये कोई जीव को मुक्त होने का मार्ग नहीं है। वो उनको समझ में आ जाएगा कि नया बंधन करेगा वो क्या करेगा नया बंधन हो जाएगा इसके लिए। छूटने का मार्ग मैंने छूटने का उपाय इस जीव को अनादि से भव रोग है। ये जो भव भ्रमण कर रहा है ये भव रोग के कारण से कर रहा है, और ये रोग बहुत पुराना हो गया है, क्रॉनिक। जैसे कोई रोग घर कर जाता है तो फिर वो दुसाध्य हो जाता है या असाध्य हो जाता है, ऐसे ये भवरोग असाध्य नहीं है किंतु दुसाध्य तो हो गया है। और उसमें सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु की आज्ञा की उपासना बिना, सत्समागम की उपासना के बिना कोई ये भवरोग को मिटाना चाहे तो ऐसे कभी मिटता नहीं है। और उसी एक वाक्य में अगर वो उपयोग स्थिर करता है तो उसको पता चल जाता है कि उसमें बिना गुरु ये आत्मस्वरूप को जानना, निश्चय होना, ये असंभव है, कभी नहीं बनता। एक बात हेतुपूर्वक ये पत्र लिखा गया है, जो भी जितनी भी बात लिखी है वो नीचे के एक प्रसंग के संदर्भ में वो बात लिखी है। सभी जीव में परमात्म स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। सब जीव, हमारा तुम्हारा सबका, जो भी जीव है वो भीतर में परमात्म स्वरूप है, दूसरा किसी का स्वरूप नहीं है। जो जिनेंद्र का जिनपद है ऐसा ही अपना स्वरूप है, कोई फर्क नहीं है, उसमें संशय भी नहीं है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा वही परमात्मा है मूल स्वरूप से। तो फिर श्री देवकर्ण जी स्वयं को परमात्मा स्वरूप मान लें तो यह बात असत्य नहीं है। अब क्या घटना घटी है कि देवकर्ण जी करके जो थे स्थानकवासी के साधु, वो 6-7 साधु साथ में रहते थे ना, लल्लू जी आदि, उसमें देवकर्ण जी थे, वो प्रवचनकार थे, प्रवचन वो देते थे, शोभसम भी थोड़ा विशेष था और बोलने की उनकी छटा भी थी, वो सत्संग कराने में वो मुख्य थे। और उन दिनों में जब ये पत्र चल रहा है, उन दिनों में किसी ने कृपालु देव को शिकायत की है कि आजकल देवकरण जी अपने को परमात्मा मानने लगे हैं और हमको ये बात जचती नहीं है। वो बार बार बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, और ऐसी मान्यता कर लो, मानो कि हम परमात्मा हैं। आपको मानना चाहिए कि हम परमात्मा हैं, हम भी मानते हैं कि हम परमात्मा हैं। तो ऐसी बातें हमको जचती नहीं है, इस विषय में आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। तो वो मार्गदर्शन वो लिख रहे हैं, सभी जीव में परमात्मा स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। तो फिर श्री देवकरण जी स्वयं को परमात्मा स्वरूप मान ले, मानने मानने में फर्क होता है। मानना दो तरीके से होता है, एक कल्पना से और एक वास्तविकता से। वास्तविकता में आकर के माने अलग बात हो जाती है, कल्पना करके मान ले बात अलग हो जाती है। तो वो मान ले तो वो बात असत्य नहीं है, बात की तरह से बात असत्य नहीं है, परंतु ये परंतु करके सब बात कहना है। ये माना तो माना, ठीक है चलो, तो सब परमात्मा है मान लिया उसने भी, परंतु यथार्थ रूप से कैसे माना जाए। परंतु जब तक वह स्वरूप यथा तथ्य प्रकट न हो, मैंने अपनी दशा में ये स्वरूप प्रकट रूप से दर्शन नहीं देता हो, वहां तक वो परमात्मा मानना वो कहां से आया, परंतु जब तक वह स्वरूप यथातथ्य प्रकट न हो तब तक मुमुक्षु या जिज्ञासु रहना अधिक अच्छा है। कैसा परमात्मा है उसकी जिज्ञासा में रहना। जैसे ये तो देवकरण जी को पत्र लिखा है, लेकिन मुमुक्षु शब्द लिख करके लिखा है कि कोई भी मुमुक्षु को ये बात लागू पड़ती है, सभी मुमुक्षु को लागू पड़ती है। इसलिए जो भी मुमुक्षु है उनको विचार करना है इस विषय में, क्योंकि हमने भी सुन लिया कि आत्मा है तो परमात्मा है मूल स्वरूप से, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। उनकी मान्यता करना, उनकी श्रद्धा करना, ऐसा श्री गुरु का उपदेश भी आता है, तो हमको मानने में क्या आपत्ति है, मान लें कि हम परमात्मा हैं, तो ऐसे नहीं। जहाँ तक वो प्रकट अनुभव रूप नहीं हुए, परमात्मा स्वरूप का प्रकट अनुभव होना उसको कहते हैं कि यथा तथ्य प्रकट हुआ। जैसा है वैसा हमारी पर्याय में प्रकट हुआ, प्रकट अनुभव रूप हुआ तो प्रकट हुआ ऐसा कहते हैं। ऐसा जहाँ तक नहीं बने, मैंने स्वानुभव नहीं हुए, वहाँ तक उस विषय में जिज्ञासु रहना वही अच्छा है। कल्पना कर बैठना अच्छा नहीं है, जिज्ञासा में वो बात को रख लेना कि परमात्मा स्वरूप माने कैसा। परमात्मा स्वरूप बोल दिया कि आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है, माने कैसा। जहां तक प्रकट अनुभव रूप नहीं हो वहां तक उसकी जिज्ञासा में रहना, ऐसा कह करके कल्पना करने का निषेध किया है। ऐसे कल्पना से मान लेने का निषेध कर दिया है। एक तो वो बात है, दूसरी बात वो भी है कि जो आत्मस्वरूप को अनादि से जिसने निश्चय नहीं किया, मैंने पहचाना नहीं, उनको पहचानने के लिए उसकी जिज्ञासा में पहला आना पड़ता। जब भी पहचान होती है, जिज्ञासु रहने का मतलब ये होता है। तो कैसे होता है, अपन मुमुक्षुता के स्टेज वाइज इसका विचार करें तो, कि जो जीव पूर्णता के लक्ष्य में आता है वो पूर्णता तो पर्याय है, लेकिन जब वो पूर्णता के लक्ष्य में आता है उनको अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की अपूर्व भावना उत्पन्न होती है। और ये अपूर्व भावना ऐसी होती है कि मैं शीघ्र से शीघ्र आत्मस्वरूप का प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन कर लो, स्वरूप प्राप्ति मुझे शीघ्र हो जाए और मेरे परिणाम सहज स्वाभाविक रूप से बिना राग द्वेष वाले हो जाए, मैं सहज ज्ञाता रह जाऊं। लेकिन वो कैसे संभव है कि मेरा जो आत्मस्वरूप है उसका अगर मुझे अवलंबन हाथ लग जाए तो उसके आत्मस्वरूप के अवलंबन में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि परिणाम का स्वभाव अवलंबन करने का है, चाहे वो स्वयं का अवलंबन लिए या दूसरे का अवलंबन लिए। दूसरे का अवलंबन लेते हुए तो राग द्वेष और संसार चल रहा है। अब सहज स्वरूप में रहने का अवलंबन रहा करे, वो स्वरूप कैसा होगा कि जिसका अवलंबन रहने से सहज दशा अविकृत और स्वाभाविक रहे, इसका एक स्वरूप विषय जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अपूर्व जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जहां तक स्वरूप का निश्चय नहीं होता है वहां तक उसको बेचैनी रहा करती है, और अगर लंबा उसमें समय निकलता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है, तब स्वरूप का निश्चय होता है। मतलब ये हुआ कि बिना जिज्ञासा किसी को स्वरूप का निश्चय होता है, ऐसा नहीं बनता है। अपूर्व जिज्ञासा के बाद उस जिज्ञासा में, जिज्ञासा लंबाने से दर्शनों का अनुभव घटता है, कटता है, ज्ञान में निर्मलता आती है, क्योंकि जिज्ञासा अपूर्व होने से उदासीनता और बढ़ती है। जो उदासीनता शुरू से आई है वो उदासीनता और बढ़ जाती है, उदासीनता का क्रम में वो आगे बढ़ता है। वो 172 में लिया कृपालु देव के, उदासीनता का क्रम का नित्य सेवन करना। उदासीनता का क्रम क्या हो सकता है, लिखा लिख दिया हमने, पढ़ भी लिया है, लेकिन उदासीनता का क्रम क्या होता है कि पहले जो उदासीनता आई, बाद में मुमुक्षुता वर्धमान होने से, बढ़ने से और उदासीनताएं, और फिर आगे बढ़ने से और उदासीनताएं, ऐसे क्रम से उदासीनता बढ़ती जाए, वैराग्य बढ़ता जाए, उसको कहते हैं कि उदासीनता का क्रम का सेवन करना। तो पहले तो शुरू में ही पूर्णता का लक्ष्य होने के लिए तो उदासीनता आई थी, परिभ्रमण की चिंता से आई थी। वो उदासीनता जब स्वरूप की अपूर्व जिज्ञासा आती है तो और बढ़ जाती है। और इस परिणाम से जीव का मति ज्ञान और निर्मल होता है। जिस मति ज्ञान में आत्मस्वरूप की क्षमता प्राप्त होती है, योग्यता की प्राप्ति होती है, आत्मा एक अति निर्मल पदार्थ है, संपूर्ण निर्मल पदार्थ है, संपूर्ण शुद्ध पवित्र पदार्थ है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए भी निर्मलता चाहिए। मलिन ज्ञान में वो जाना नहीं जाता। क्या आत्मस्वरूप मलिन ज्ञान में जाना नहीं जाता, इसलिए ज्ञान निर्मल चाहिए। और वो निर्मलता स्वरूप प्राप्ति की, स्वरूप की जानने की अपूर्व जिज्ञासा से ही पैदा होती है। इसलिए यहाँ उपदेश दिया है कि देवकरण जी ने अपने स्वरूप को परमात्मा माना है, लेकिन प्रकट किया है तो जहां तक यथा तथ्य मैंने सही समीचीन सम्यक रूप से प्रकट नहीं किया। यथा तथ्य सादी भाषा है, सम्यक रूप से, सम्यक प्रकार से वो शास्त्र परिभाषा है, वो प्रकट नहीं किया हो वहां तक मत मान लेना कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा मानने से कोई फायदा नहीं है, फायदा तो नहीं है, नुकसान हो जाएगा, निश्चयाभास हो जाएगा। तो जिज्ञासा में रहना अच्छा है। बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को समझे वो कभी निश्चयाभास में नहीं आएगा। जिज्ञासु रहना अधिक अच्छा है, और उस मार्ग से यथार्थ परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है। मतलब ऐसे जिज्ञासा में रहने से यथार्थ परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है, या यथा तथ्य सम्यक प्रकार से परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है जिज्ञासा में रहने से। उस मार्ग को छोड़कर प्रवर्तन करने से उस पद का भान नहीं होता। क्या कहा कि उस मार्ग को मैंने, उस क्रम को छोड़ करके या जिज्ञासा को छोड़ करके, शास्त्र में लिखा है कि आत्मा है सो परमात्मा है, उसकी मान्यता करो, श्रद्धा करो, तो हमने माना कि हम परमात्मा है, ऐसा नहीं चलता। इसका जो मार्ग है, उपाय है, उसमें दो बात साथ में है, एक तो अपनी अपूर्व जिज्ञासा और दूसरा ज्ञानी पुरुष का समागम की उपासना, क्योंकि प्रगट आत्मस्वरूप को दर्शाने वाले ज्ञानी पुरुष भी प्रत्यक्ष चाहिए। ऐसे अकेले जिज्ञासा में से भी काम नहीं आता है। बाबू जी का तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है, जिज्ञासा में तो बहुत आए थे, लेकिन ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष समागम की उपासना किए बिना वो आत्मस्वरूप का निश्चय कभी किसी को नहीं होता। पहचान नहीं होती तो अनुभव होने का सवाल नहीं है। दो बात साथ में होती है तब ये काम संपन्न होता है। हाँ एकदम ठीक बैठता है। वो बहुत अपूर्व जिज्ञासा में आए थे, उतने छटपटाए थे कि जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। तो जब प्रत्यक्ष गुरु मिले तो देर नहीं लगी, लेकिन चाहिए, जिज्ञासा भी चाहिए और ज्ञानी पुरुष का समागम भी चाहिए। कोई जानने का विषय है, अगर वो नहीं जानता है कि नहीं मैं तो अपने आप में अंदर में से प्राप्त करना है, अंदर में से कर लूंगा मैं, ऐसे नहीं होता है। तैयारी थी उतनी। ज्ञानी वो तो क्या है, योग्यतावान को देर नहीं लगती है। इसका मतलब क्या होता है, ये इनका इतिहास जो है वो क्या सूचित करता है, इस पर से हमें उपदेश लेना है कि जो योग्यतावान होता है उनको तो तेजी को इशारा बस हो जाता है, पर्याप्त होता है। हमारे गुजराती में कहवा है, तेजी ने इशारो बस छे, गधेड़ा ने डफना मारवा पड़े। जो घोड़ा होता है, तेज घोड़ा होता है, उसके ऊपर जो सवार बैठता है वो पैर से एक अंगूठा से इशारा करता है तो जैसे उड़ता है, हवा में उड़ता हो ऐसा तेज चाल पकड़ता है, ऐसा छलंग लगाता है। उनको इशारा करना पड़ता है, पैर का अंगूठा से स्पर्श करता है, वो ऊपर बैठे बैठे सीधा उड़ने लगता है। गधा होता है वो मार मार के चलाना पड़ता है, चलता ही नहीं आगे। ये बात है, उनको एक संकेत मिल गया, काम हो गया। जरूरत तो उतनी सी है, तो उपासना क्या किया कि गुरुदेव को परिणमते हुए देखा। दूसरे जीवों ने उस वक्त क्या देखा कि गुरुदेव को बोलते हुए देखा था। दिखते थे तो सबको गुरुदेव ही दिखते थे, लेकिन बोलते हुए प्रवचन करते हुए दिखते थे, और उन्होंने परिणमते हुए देखा। बस उतना फर्क है। ये समझ सत्समागम की उपासना है, असली उपासना है, बाकी उपासना नहीं है। ऐसे सुना करे और गुरुदेव बोला करे और ये सुने सुनता करे सालों तक है। बहुत लोग सुनते थे और सालों तक सुना लोगों ने, इससे क्या हो गया, कोई सत्समागम की उपासना नहीं हुई है। कोई सत्समागम की उपासना नहीं है, उपासना तो उसके परिणमन को अंगीकार कर लेना, वही उपासना है। उपासन समीप में आसन लगाना, उसी को कहते हैं कि उपासना, उपासन। ये भाव की बात है। क्षेत्र से समीप में पहली फ्रंट लाइन में बैठना वो बात नहीं है कि प्रवचन सुनने के लिए सबके आगे बैठना, पाठ के पास बैठ जाना, वो बात नहीं है। भाव में समीप बैठ जाना। तो जैसे इनके भाव है ऐसे अपने भाव हो जाने चाहिए, जब तो भाव की समीपता है। वो तो इससे भी बड़ी बात है, वो तो इससे भी बड़ी बात है कि वो तो प्रवचन सुना और रात्रि को सम्यक दर्शन हुआ ध्यान में, और सिंह को उसी वक्त हुआ, उपदेश सुनते सुनते हो गया। कैसे सुना होगा, तिरियंच दशा में कैसे सुना होगा, इसकी जिज्ञासा में चले जाओ कि ये तो कैसी घटना होगी। जो उपदेश सुना वो अंदर में उतार लिया पूरा का पूरा, श्री गुरु के उपदेश को, उपदेश के एक अंश को भी नीचे नहीं गिरने दिया कि जिससे वो पैर से कुचला जाए। ऐसी महिमा के साथ उपदेश को सिरोधार्य कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो उसी वक्त निबेड़ा हो जाता है। धर्म का फल तो रोकड़ा है, कर्म का फल उधारी में जाता है। धर्म का फल की उधारी नहीं होती है, कर्म का फल की उधारी होती है हमेशा। आज कर्म बांधे, अगले भव में उसका उदय आएगा। धर्म में ऐसा नहीं है, वो तो अभी अभी आत्म शांति प्रकट होती है, अभी आत्मानंद में आ जाता है जी। उस मार्ग को छोड़कर यानी स्वच्छंद से निश्चय करने से निश्चय करना, ये कोई छूटने का मार्ग नहीं है। जो मार्ग है, निमित्त उपादान दोनों को अपने अपने स्थान में रख करके स्वीकार कर लेना, छोड़कर प्रवर्तन करने से। उस पद का मैंने परमात्म पद का भान नहीं होता, अनादि से परमात्म स्वरूप होने पर भी परमात्म पद का भान नहीं होता, तथा श्री जीन वितराग सर्वज्ञ पुरुषों की असाधना करने रूप प्रवृत्ति होती है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा कल्पना से मान लेने से जो परमात्मा बने हैं इसकी असाधना हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो वो है कि जिसने परमात्मा पद प्रकट किया है, पर ये कल्पना करके मान लेता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो वो परमात्मा वास्तविक जो परमात्मा है उनकी असाधना और अवमानना हो गई। दूसरा कोई मतभेद नहीं है, हमारा तो यही मत है, दूसरा कोई मतभेद हमारा इस विषय में नहीं है। इस प्रकार से मानो अगर परमात्मा स्वरूप आत्मा की मान्यता श्रद्धा करनी है तो सही रूप से इस प्रकार से करो। मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसलिए आने से पहले ही निश्चय कर लो और काम कर लो मार्ग का सेवन करके आत्मस्वरूप का प्रणाम। इस तरह से इस पत्र में जो है वो बहुत अच्छी बात आई है। यहाँ तक सुख